أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جس کورس کا ہم نے آغاز کیا ہے، علامہ طباطبائی کی رسالہ ولایت، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس کتاب اور جس رسالہ ولایت کو ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پہلا سیشن ہوگا، اس پہلے سیشن میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ مقدماتی گفتگو جو ہے وہ کی جائے، اور تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ اس کا بیان کیا جائے کہ جو ہم ٹیکسٹ جس کو ہم ریڈ کریں گے، اور انگلش کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور میرے پاس اوریجنل عربی کا نسخہ ہے، میں زیادہ تر اس کو اپنے سامنے رکھوں گا. تو اس ٹیکسٹ کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھا جائے، اور جو تھوڑی سی ایک اس کی انٹروڈکٹری جو اس کا ایسپیکٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ شروع میں اس حوالے سے جو ہے بات کی جائے. یہ ولایت رسالہ ولایت جو ہے، یہ علامہ طباطبائی کی ایک مختصر تحریر ہے، لیکن اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اور اس میں بڑی گہرائی ہے. اور علامہ طباطبائی، انشاءاللہ آگے چل کر میں وہ عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، علامہ طباطبائی بعض جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رسالے میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہیں سے نہیں سیکھی. وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، اور میں نے کسی اور جگہ اس کو لکھا بھی نہیں ہے. یعنی بعض علامہ طباطبائی کی جو جس کو عرفان کی اصطلاح میں شہود کہتے ہیں، اور نگاہ قلب کے ساتھ آپ نے جن حقائق کو دیکھا، ان کا مطالعہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بیان کیا اور کسی اور اپنی کتاب میں، کسی اور اپنی بک میں، تفسیر المیزان یا دوسری جگہ میں نے اس کو جو ہے وہ نہیں بیان کیا ہے. تو اس لحاظ سے رسالہ ولایت کی اہمیت ہے. دوسری بات یہ کہ میرے پاس یہ امکان نہیں تھا فی الحال کہ میں جو لوگ بھی اس میں آنا چاہتے تھے، جنہوں نے بھی ریکویسٹ کی، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یا بعض حضرات جو ہیں ان کو اس میں زیادہ دلچسپی نظر نہ آئے یا اس کو سمجھنے میں مشکل ہو، کیونکہ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے. اور اس کتاب کو اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان انداز میں ہو سکے آپ کے سامنے چیزوں کو بیان کروں، مثالوں کے ساتھ بیان کروں، لیکن بہت زیادہ انٹلیکچوئل اور مسٹک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے. اگر آپ نے پہلے سے ریلیجیس ٹیکسٹ میں یا اوورال آپ کی اپروچ میں انٹلیکچوئلٹی ہے، تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے. تو اس لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سے افراد کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے اس رسالہ ولایت کو آیا ہمیں اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس انف صلاحیت موجود ہے یا ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. وہ آپ خود جو ہے اپنے طور پر جج کریں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں آپ کے سامنے جو ہے وہ منتقل کر سکوں. علامہ طباطبائی نے اس رسالہ ولایت کے اندر جو ہے وہ اپنے ایک مسٹک جرنی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. अपने हालात और मुशाहिदात को जो आपकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जर्नी है उस रूहानी सफर को आपने जो है वो इसमें कलमबंद किया है और उसको आपने जो है वो यहाँ पर बयान किया है। बुनियादी तौर पर ये बहुत जरूरी है कि जब हम रिसाले विलायत को पढ़ना शुरू करते हैं या उसके कोर्स को अटेंड कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि हमारे लर्निंग गोल्स क्या होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और हम इसके नतीजे में क्या चीज हम अचीव कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है इस मकाम पर समझना कि हमें जनरली एक चीज का पता है लेकिन अल्लामा तबतबाई के इस रिसाला विलायत को खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद, इसकी इन डेप्थ जो है वो स्टडी करने के बाद एक जो पहलू है, जो एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है जाहिर से बातिन की तरफ सफर करना। और अल्लामा तबतबाई अपने इस रिसाले विलायत के जरिए से हमें उस मैकेनिज्म यानी वो जो हमारा एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम चीजों को किस तरह से देखें और जाहिर से बातिन की तरफ हम सफर किस तरह करें और हकाइक तक हमारी रसाई किस तरीके से हो। अगर हम थोड़ा सा अपने अतराफ में हम गौर करें, अपनी जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं हम जब उनको भी देखते हैं और मेरा एक तवील तजर्बा भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ है और वो बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू है और वो ये है कि हम बहुत ज्यादा जाहिरबीन हैं, हम बहुत ज्यादा हमेशा सरफेस पे रहते हैं लेकिन कभी हम गहराई में नहीं जाते, कभी हम बातिन में नहीं जाते, कभी हम चीजों की हकीकत को नहीं देखते, कभी हम असल हदफ और असल मकसद जो है हम उसकी बजाय जो चीज एक जरिया थी या जरिया होती है किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए या वसीला होती है किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, हम उस वसीले को ही हदफ समझ बैठते हैं, हम उसी को हकीकत समझ बैठते हैं। एक आम सी मिसाल जो मैं इस वक्त शुरू में दे सकता हूं वो ये कि जाहिर है कि जब हम आजादारी की बात करते हैं तो जो लोग आजादारी में मसलन यकीनन हमारे दीन का ईमान का हिस्सा है अपनी जगह पर, लेकिन आजादारी एक वसीला है किसी मकसद तक पहुंचने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपने देखा होगा कि सिर्फ आजादारी ही अहम है और इससे बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है, लेकिन बास अफराद ऐसे भी हैं कि जो आजादारी के जरिए से अपने आप को इमाम हुसैन के साथ कनेक्ट करते हैं और सिर्फ जो है वो जबान से तारीफ करने और जबान से दावा करने की हद तक नहीं है बल्कि अमलन वो अपने आप को अल्लाह के साथ, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, अंबियाए इलाही के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं और अपनी अमली जिंदगी में जो है वो इमाम हुसैन की जो आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो सीरत है, उसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, उस पर अमल करते हैं और सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल अप्रोच काफी नहीं है कि हम ये कहें कि हम इमामत के कायल हैं, नबूवत के कायल हैं, आखरत के कायल हैं, अल्लाह के कायल हैं। हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली उसके आर्गुमेंट्स का भी पता हो, हम अल्लाह की जात को, उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव भी कर सकते हो, हमें ये भी पता हो कि नबूवत और इमामत का मतलब क्या है, विलायत का मतलब क्या है, लेकिन जो थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसको हम अकीदा कहते हैं, जिसको हम अपना बिलीफ सिस्टम कहते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज है और जिसको हम जो है वो बुनियादी तौर पर अमल कहते हैं, यानी प्रैक्टिकली किसी चीज का हमारी जिंदगी में होना, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, ये दो अलग चीजें हैं। हरगिज हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी चीज का इल्म हमें फौरी तौर पर उसके अमल की तरफ भी ले जाएगा। यही वजह है कि हम आखिरत की बात करते हैं। ये कैमरा अपना बंद करते हैं अगर किसी ने खोला हुआ तो। जब हम आखिरत की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि हम कयामत पर ईमान लाते हैं, हम सबको पता है कि आखिरत पर हमारा ईमान है, हम सबको पता है कि जजाओ सजा होगी, हम सबको पता है कि गुनाहगारों को अल्लाह ताला सजा देगा और जो नेक लोग हैं अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से नवाजेगा। लेकिन अमली जिंदगी में आखिरत का खौफ होना ये बिल्कुल एक अलग चीज है। अमली जिंदगी में अल्लाह का खौफ होना ये बिल्कुल एक अलग चीज है। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम जहरी तौर पर मोमिन हैं, हम शिया हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जो है खौफ खुदा हमारे अंदर होगा, आखिरत का खौफ हमारे अंदर हो। जब हम इरफान की बात करते हैं, जब हम मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, तो मिस्टिसिज्म का ताल्लुक जो है वो मजहब के इंतहाई इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का नाम है, हर चीज के बातिन में उतर जाने का नाम है और असल हकीकत तक पहुंच जाने का नाम है। लिहाजा जो मिस्टिक अप्रोच है वो बिल्कुल उस अप्रोच से मुख्तलिफ है जो हमारी थियोलॉजिकल जो है वो अप्रोच होती है। तो अल्लामा तबतबाई के साथ मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरह से राबता रहा है। एक वो लोग थे कि जो अल्लामा तबतबाई को सिर्फ जाहिरी तौर पर देखते थे और जाहिरी तौर पर उनसे मिलते थे और जाहिरी तौर पर उनसे मुतासिर होते थे। ये एक ग्रुप है जो जाहिर है कि इस हद तक भी कुछ ना कुछ उनसे सीखता होगा। लेकिन एक वो ग्रुप भी है कि जिसने अल्लामा की जो इंटेलेक्चुअल और एकेडेमिक जो लाइफ है और उनकी सीरत जो है उनकी जिंदगी में कदम रखा है, अल्लामा की जो किताबें हैं, अल्लामा के जो शागिर्द हैं, आज आप देखें कि पूरी यानी दुनिया में अगर इस्लामिक फिलॉसफी में कहीं कोई माहिर बैठा हुआ है और वो हर्फ आखिर है तो वो अल्लामा तबतबाई का शागिर्द है। मसलन अगर आप आयतुल्ला मुतहरी को देखें तो आयतुल्ला मुतहरी जो हैं वो अल्लामा तबतबाई के बड़े करीबी शागिर्दों में से एक थे। और अल्लामा आयतुल्ला जवादी आमली को आप देखें, अल्लामा हसन ज़ादा को आप देखें, आप जितने भी बड़े बड़े नाम सुनेंगे वो सब के सब अल्लामा तबतबाई के। तो एक ग्रोह वो है कि जिसने अल्लामा तबतबाई की किताबों से इस्तफादा किया। इस वक्त अलमिजान आपकी मौजूद है और आपकी बहुत सी किताबें तालीफात मौजूद हैं और उनसे उन्होंने अपने आप को जो है वो इंटेलेक्चुअली भी प्योरिफाई किया, आपके जो फलसफी और अखलाकी आसार हैं उनसे उन्होंने जो है वो इस्तफादा किया और किसी मकाम तक पहुंचे। आज भी जो फर्ज करें अगर मैं अपनी जात का ताल्लुक जहां तक है तो जो हमारा तफसीर का एक रेगुलर हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स गुज़श्ता 2-3 साल से वो जारी है, तो वहां पर भी बुनियादी तौर पर ये होता है कि मैं सबसे पहले जिस चीज को रुजू करता हूँ वो है तफसीरे कुरान आयतुल्ला मुतहरी की और आयतुल्ला अल्लामा तबतबाई की, कि उसमें जब इंसान उसको पढ़ता है, उसको देखता है, उसकी गहराई में जाता है, तो फिर उसमें बहुत कुछ इंसान जो है वो वहां पर अपने उसमें सीखता भी है इंसान। तो ये जो जहां तक ये मसला है कि ओके, तो ये तीसरे किस्म का ग्रोह जो है अल्लामा तबतबाई का वो है कि जिसने आपकी अमली सीरत से जो मानूस हुआ है, जिन्होंने आपकी अमली सीरत से जो है वो बहुत कुछ सीखा है। लिहाजा आज जिस रिसाले को या जिस रिसाले विलायत को हम शुरू कर रहे हैं उसका ताल्लुक भी आपकी इरफानी और अमली सीरत से है। और बाज आपके जो शागिर्द हैं जैसे आयतुल्ला जवादी आमली, वो कुरान की बाज आयतों की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसके बेहतरीन मिसदाक जो हैं वो खुद अल्लामा तबातबाई की जात हैं, कि अल्लामा तबातबाई जो हैं वो बुनियादी तौर पर जैसे कुरान में कहते हैं कि अल्लदीना जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में यानी अल्लदीना जाहदु फीना यानी मेरे रास्ते में नहीं, जो फीना जो मेरी जात की खातिर जो है वो जिहाद करेगा मैं उसको रास्ते दिखाऊंगा। और मैं युमिन बिल्ला है यह देख कल्बहु, जो अल्लाह पर हकीकी ईमान लाएगा तो अल्लाह ताला उसके कल्ब की हिदायत करेगा। अल्लाह ताला की हिदायत दो किस्म की है, एक को हिदायत तशरीई कहते हैं और एक को हिदायत तकवीनी कहते हैं। हिदायत تشریعی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آئمہ اہل بیت کو بھیجا ہے، یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کی رہنمائی حاصل کریں یا رہنمائی حاصل نہ کریں. لیکن جو جس ہدایت کی بات قرآن کی اس آیت میں کی جا رہی ہے وہ ہدایت ہے کہ جس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے اور کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا. اللہ براہ راست جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر انسان کو جو ہے وہ منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. تو علامہ طباطبائی بھی یہاں پر اسی آیت کے مصداق ہیں، اور بہت سی چیزیں انہوں نے نہ کسی استاد سے سیکھی ہیں، نہ کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے سیکھی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی معرفت اور تہذیب نفس کے جو مراحل علامہ طباطبائی نے طے کیے ہیں ان کی روشنی میں آپ نے بہت سے حقائق تک آپ پہنچے ہیں. اور میں اب وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ اس رسالہ ولایت کے آخر میں ہم جو ہے وہ وہاں پر پڑھیں گے، اور وہ ہے وہ فرماتے ہیں وہاذا البرهان من مواهب الله المختصه بهذه الرساله. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر آ کر یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو برہان میں نے پیش کیا ہے، یہ جو لاجک میں نے پیش کی ہے، ھذا البرهان من مواهب الله، یہ اللہ تعالیٰ کے گفٹس میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کے فیض کا نتیجہ ہے. المختصۃ بهذه الرسالہ، کہ جو صرف اور صرف اس رسالہ ولایت سے مخصوص ہے. میں نے یہ بات کبھی کسی اور کتاب میں، کسی اور پلیٹ فارم پر نہیں کہی، بلکہ میں نے صرف رسالہ ولایت کے اندر جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی جو ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام ہے رسالہ ولایت. تو بنیادی طور پر جو اس میں ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک اس ایسے راستے کی طرف علامہ طباطبائی اشارہ کرتے ہیں کہ جس راستے پر چل کر انسان جو ہے وہ، اب دیکھیں میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ اس اصطلاح کو یاد رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ولایت الہی کا حامل ہو جاتا ہے. ولایت الہی کا حامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سرپرستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں انسان چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گارڈین شپ میں انسان چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں انسان چلا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ دو قسم کا رابطہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا وہ رابطہ ہے کہ جو پوری کائنات کے ساتھ رابطہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک رابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر و مددگار بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. یعنی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے وہ گارڈین ہوتے ہیں. گارڈین کا کیا مطلب ہے؟ پیرنٹس کا اپنے بچے سے جو رابطہ ہے وہ رابطہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہر لمحہ اس بچے کی حرکات و سکنات، اس کے ایکشنز، اس کا بیہیویئر، اس کا عمل، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کرتے. تو کیا ہمارا ریلیشن ویسا اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم ولایت الہیہ کے حامل ہو جائیں؟ علامہ طباطبائی کا رسالہ ولایت جو ہے بنیادی طور پر ہمیں انہی خطوط سے آگاہ کرتا ہے کہ اگر ہم اس گہرائی کو جو اس رسالے میں موجود ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو علامہ کا کہنا یہ ہے، اور جنہوں نے اس رسالہ ولایت کی تشریح کی ہے اور تفسیر کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑے اہم اصول ہیں جس کی طرف علامہ طباطبائی اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کیسے اس راستے پہ چل سکتا ہے کہ جو ولایت الہی کا رابطہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا ولی ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو چند لفظوں میں ایکسپلین کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون سی کتاب ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، کون سا کورس ہے ہم جس کو شروع کر رہے ہیں، और वो ये कि विलायत इलाहिया का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला किसी का वली बन जाए और कोई शख्स जो है अल्लाह ताला की विलायत का हामिल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर किसी किस्म के इस्तकलाल को नहीं देखता, वो अपने अंदर किसी किस्म के इंडिपेंडेंसी को नहीं देखता, बल्कि वो अपने इख्तियार और इरादे किसी चीज को जो है वो मद्देनजर नहीं रखता, ना वो खुद को। आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि हम जो है वो अल्लाह ताला को तो वैसे ही भूल जाते हैं, हम अपनी जात को बहुत ज्यादा देखते हैं, अपनी जात को कि मैं ये हूं, मेरा वजूद ये है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या स्टेटस है, मेरे अंदर क्या सिफात हैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर क्या औसाफ हैं, मेरी क्वालिटीज क्या हैं। कभी कभी मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं कि मैं कितना इल्म मैंने हासिल कर लिया, कितना एजुकेटेड हो गया, कितने लोग मेरी तारीफ करते हैं, कितने लोग। आप देखें कि इन तमाम जगह पर, और फिर जब मैं अमल करता हूं तो हमारे अफआल जो हैं हम उस पर भी बहुत खुश होते हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उस पर खुश होते हैं, अगर हम रोजा रखते हैं हम उस पर खुश होते हैं, कोई नेकी करते हैं तो हमारे आमाल हमारी निगाहों में अहम होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब इंसान अपने आमाल की तरफ तवज्जो करता है, जब इंसान अपने औसाफ की तरफ तवज्जो करता है, अपनी क्वालिटीज की तरफ तवज्जो करता है, जब इंसान अपनी जात में जो है वो उसको महवर व मरकज और उसको सेंट्रल फिगर बना देता है, तो वहीं पर अल्लाह ताला को भूल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह की विलायत का इंसान हामिल होता है तो ना वो अपनी जात को देखता है, ना वो अपने फेल को देखता है, ना वो अपने औसाफ को देखता है, और ना वो दूसरों की सिफात को देखता है, ना वो दूसरों पर ट्रस्ट करता है, ना वो दूसरों पर इन्हिसार करता है। यानी क्या मतलब, देखिए हम आमतौर से जो है, एक तो हमारी अपनी जात हो गई, लेकिन दूसरा हमारे अंदर एक और भी मसला है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। अगर किसी के स्टेटस को देखते हैं, किसी के मकाम को देखते हैं, किसी की अचीवमेंट को देखते हैं, किसी की एजुकेशन को देखते हैं, तो तब भी, और फिर कभी कभी अगर वही शख्स हमारा दोस्त होता है, उसके पास पावर होती है, उसके पास इख्तदार होता है, उसके पास कुव्वत होती है, तो हम ये समझते हैं कि वो हमारी मदद कर सकता है, हम उस पर इन्हिसार करते हैं। तो जिस वक्त हम उस पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम उस पर एतमाद कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम ये समझते हैं कि वही इस वक्त हमारी मदद कर रहा होता है, तो उसी लम्हे हम अल्लाह को भी फरामोश कर रहे होते हैं, उसी वक्त में हम अपने अल्लाह को भी भूल रहे होते हैं। तो जब इंसान गफलत का शिकार होता है तो फिर जो है वो उसमें फिर जो है वो मसाइल खड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलायत इलाहिया का मतलब ये है कि इंसान ना अपनी जात को देखता है, अल्लाह की जात में फना हो जाता है, ना अपने औसाफ को देखता है, ना दूसरे को इस तरह से देखता है कि सिर्फ वही है कि जो इंसान उसके ऊपर एतमाद कर सकता है और किसी पे नहीं। कुरान मजीद की मैं आपके सामने एक आयत भी पढ़ रहा हूं, बल्कि अगर मैं वो आपको आयत दिखा भी सकूं, अब अगर यहाँ पर उस आयत जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, अगर मैंने यहाँ पर नोट की हो तो जी हाँ, वो ज़ाहिरन मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आयत ये है कि इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ला अल-किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। अब देखें कुरान मजीद की इस आयत में पैगम्बर ये फरमाते हैं कि वली मेरा जो है वो अल्लाह है, मैं अल्लाह की विलायत के तहत हूँ, वो अल्लाह के जिसने इस किताब को नाजिल किया है, व हुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो सालिहीन का मुतवल्ली है, वो सालिहीन का सरपरस्त है, वो सालिहीन का जो है वो जो है वो उनको सुपरवाइज करता है। तो ये कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला की एक राबता जो है वो सिर्फ उन लोगों के साथ है जो मोमिन हैं, जो साले हैं, जो सालेहीन में से हैं, तो उनकी तरफ जो है वो जो है बुनियादी तौर पर इशारा किया गया। फिर जो अगला नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि अल्लामा तबतबाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो रिसाले विलायत में देते हैं, और वो मैसेज बुनियादी तौर पर ये है, वो ये कहते हैं कि जो नबुवत का रास्ता है वो बंद हो चुका है, जो इमामत का रास्ता है वो बंद हो चुका है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि अल्लाह ताला अब किसी को नबी बनाएगा तो वो मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह ताला अब किसी को इमाम बनाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। जो मासूमीन हैं वो भी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का इंतखाब है, और जो जो नबी हैं और जो अंबिया थे और जो पैगंबर की जात थी वो आखिरी नबी थे। तो लेकिन जो विलायत का रास्ता है, ये वो बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी तरफ अल्लामा तबातबाई इशारा करते हैं कि विलायत का रास्ता सबके लिए खुला है। अगरचे हम नबी नहीं बन सकते, अगरचे हम जो है वो इमाम नहीं बन सकते, लेकिन जो इमाम जिसकी वजह से इमाम थे, जिसकी वजह से एक उलुल अज़्म पैगंबर नबी थे, अगर हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इसलिए कि उनकी एक्सेस थी आलम खिलकत, इस कायनात के असरार तक, यानी जो सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स है वो उस तक उनकी रसाई थी, आलम गैब तक उनकी रसाई थी। वो उन हकाइक को देख सकते थे कि जिन हकाइक को हम नहीं देख सकते। अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें उसकी असल हकीकत नजर नहीं आती, लेकिन एक नबी और इमाम उसकी असल हकीकत को देखने के काबिल है। तो अल्लामा तबतबाई ये फरमाते हैं कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते की तरफ मैं रहनुमाई करना चाहता हूँ, ये किसी नबी से मरबूत नहीं है, किसी सिर्फ इमाम से मरबूत नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए अल्लाह ताला ने विलायत इलाहिया का रास्ता खोल रखा है, और हर शख्स जो है इस रास्ते पर गामजन हो सकता है। हर शख्स जो है इस रास्ते में, आप यही वजह है कि आप देखें कि कभी किसी हमारे आरिफ ने आज तक ये नहीं कहा कि इसके बाद जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, यानी वो फना फिल्लाह की मंजिल की बात करते हैं, वो बका बादस फना की भी बात करते हैं। चलो इन तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे, तो वो सब बातें करते हैं। उनमें से कोई ये नहीं कहता कि ये वो जगह है जहां तक एक इमाम जो है वो पहुंच गया, एक मासूम पहुंच गया, तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उलमा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि शायद वो मकाम जो एक इमाम हासिल कर सकता था, जो एक नबी हासिल कर सकता था, शायद हम उस मकाम को हासिल ना कर सकें, लेकिन उसका ताल्लुक तो सिर्फ इससे है, शिद्दत और ज़ाफ़, यानी हो सकता है कि उस शिद्दत के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ, उस वजाहत के साथ, उस रोशनाई के साथ हम जो है वो ना देख सकें, लेकिन इसके बावजूद ये रास्ता फिर भी हमारे लिए खुला है। एक लेसर लेवल उसके एतबार से जो है ये रास्ता हमारे लिए खुला है। तो पहली बात हमने ये की कि विलायत इलाहिया का मतलब ये है कि इंसान अपनी इंडिपेंडेंसी को फरामोश कर दे, और उसके लिए अल्लामा तबतबाई इस रिसाले में ये बताते हैं कि खुद शनासी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी जब तक आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप मोहताज हैं, मोहताज महज हैं। आप जैसे कुरान मजीद में इरशाद होता है कि या अय्युहल इंसान अंतुमुल फुकरा इलल्लाह है, कि तुम अल्लाह की तरफ फकीर हो, यानी ऐसे फकर का एहसास कि जो एग्जिस्टेंशियल पावर्टी हो इंसान की। तो अगर वो एहसास इंसान अपने अंदर जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक इंसान अपनी जात को देखता रहेगा। देखिए कुरान मजीद की आयत क्या कहती है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि तवज्जो कीजिएगा इंशाल्लाह जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले अरबी में उसको बयान करता हूं कि जातुन लहुल फक्र, यानी ऐसा नहीं है कि मैं पहले समझूं कि मेरी एक जात है, मेरा एक वजूद है, और फिर मैं अपने अंदर फक्र को महसूस करता हूं, एहतियाज को महसूस करता हूं, नीडफुलनेस को जो है वो महसूस करता हूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा वजूद नीड है, मेरा पूरा जो वजूद है वो मोहताज है अल्लाह ताला का। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा में एक मकाम पर फरमाते हैं कि इलाही अना फकीर उन फी गनाई। अब जरा गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी बात की तरफ इशारा करते हैं, और विलायत इलाहिया का एक मकाम है कि जिसकी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं, और ये फरमाते हैं कि इलाही अना फकीरुन फी गनाई, परवरदिगारा जो कुछ मुझे तूने दिया है मैं उसमें भी तेरा फकीर हूँ, उसमें भी तेरा मोहताज हूँ, उसमें भी मैं, मुझे तेरी नीड है। तो फिर फरमाते हैं फकैफा अकून ला अकून फकीरन फी फकी, तो जो तूने मुझे नहीं दिया है मैं उसमें तेरा क्यों कर मोहताज नहीं हूंगा। तो ये वो लेवल है कि अल्लामा तबतबाई कहते हैं कि इस लेवल की तरफ अपने रिसाले विलायत में आप जो है वो बुनियादी तौर पर इशारा करते हैं कि हम जो है वो यहां तक पहुंच सकें। तो एक और नुक्ता जो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अल्लामा तबातबाई ने रिसाले विलायत के अंदर जो बात की है वो हमारे जो उरफा हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो ये कहते हैं कि बहुत से उरफा तारीख में गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ इस कायनात से समझा है, जिन्होंने बहुत से हकाइक तक पहुंचे हैं, बहुत से मआरिफ तक पहुंचे हैं, लेकिन उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो उन अपने जो शहूदात थे, जो उनकी इंट्यूशन थी, जो उनके कशफ व शहूद था, जो कल्ब के जरिए से उन्होंने चीजों को हासिल किया था, या तो वो देकर नहीं गए किसी को और वो अपने ही जो है वो सीने में उस राज को महफूज करके हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, या उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो उसको बयान कर सके। लिहाजा अल्लामा तबातबाई के बारे में वो ये कहते हैं कि अल्लामा तबातबाई ये वो इस रूहानी रास्ते पर चलने वाली वो अजीम हस्ती थे कि जिन्होंने, अब तवज्जो की जगह मेरे अल्फाज के ऊपर, कि जिन्होंने जितना रास्ता तय किया है और जितने असरार और रमूज को अल्लामा तबातबाई ने अपनी जिंदगी में समझा है और उनको हासिल किया है, उनको दूसरों के लिए भी बयान किया है और दूसरों को भी उसको काबिले फहम बनाया है। सिर्फ ये मसला नहीं है, बहुत सी चीजें हो सकता है कि एक आरिफ जो है उसको समझता हो लेकिन वो मुंतकिल करने की सलाहियत ना रखता हो, उसके पास वो अल्फाज मौजूद ना हो, उसके पास वो लॉजिक मौजूद ना हो। इसलिए कि देखें, मैं अपने तौर पर जो मर्जी दावा करता रहूं, मैं जो है आपसे कहूं कि मैंने इतने असरार हकाइक तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन आप मेरी बात को सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट करेंगे जब मैं लॉजिकल फॉर्म में उसको बयान करूंगा, जब मैं फिलोसॉफिकल फॉर्म में उसको बयान करूंगा। अगर लॉजिकल अंदाज में मैं उसको बयान नहीं करूंगा तो आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्लामा तबतबाई उस अजीम हस्तियों में से एक हैं कि जिन्होंने जितने असरार और रमूज को उन्होंने हासिल किया उनमें से पूरी कोशिश की कि वो दूसरों तक मुंतकिल करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो अल्फाज यहाँ पर लिखे, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आप देखें कि आयतुल्लाह जवादी आमली ने बड़ी खूबसूरती से चंद लफ्जों में एक बात की है। वो कहते हैं कि अल्लामा तबतबाई वो थे कि हुजूर रा हुसूल व मशहूद रा मफहूम खैर। क्या मतलब? यानी जिस चीज को उन्होंने हुजूरन हासिल किया था, जिस चीज को उन्होंने डायरेक्ट जो है जिसको हासिल किया था किसी वास्ते के बगैर, किसी टीचर के बगैर, किसी मदरसे के बगैर, किसी किताब के बगैर, वो चीज के जो उनकी डायरेक्ट नॉलेज थी उसको उन्होंने हुसूल में तब्दील किया, उसको उन्होंने इल्म में तब्दील किया, और फिर फरमाते हैं जो चीज उनका मुशाहिदा था उसको मफहूम में तब्दील किया। मफहूम आपको मालूम है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, हम मफाहीम के जरिए बात करते हैं। फर्ज करते हैं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त आपके सामने जो है, हमने ये कोर्स शुरू किया है और हम जो है वो इस पर वर्क कर रहे हैं, या मेरे सामने मेज पड़ी हुई है, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं कोई लैपटॉप उठा के तो आपके जहन में नहीं डाल रहा ना, बल्कि मैं मफाहीम के जरिए से चीजों को मुंतकिल कर रहा हूँ। अल्फाज जो है ये मफहूम होता है, वरना खुद जो अशिया है वो तो खारिज में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में मौजूद है, मैं तो कोई उसके साथ तो आप तक मुंतकिल नहीं कर रहा हूं। तो अल्लामा तबातबाई ने वो चीजें कि जिसमें आपने खुद आपके मुशाहिदात हैं, खुद आपके शहूद का नतीजा है, खुद आपकी कल्बी मार्फत का नतीजा है, इंशाल्लाह किसी मौके पर हो सकता है इसी रिसाले विलायत में मैं उस फर्क को भी वाजे करूंगा कि जो कल्ब की मार्फत होती है उसका क्या मतलब होता है, और जो अकल के जरिए से इंसान चीजों को हासिल करता है उसमें क्या फर्क होता है, और कुरान जो कल्ब के ऊपर बहुत ज्यादा ताकीद करता है और उसको अहमियत देता है, जो मार्फत कल्बी है उसका क्या मतलब होता है, इंशाल्लाह हम इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर वो ये कहते हैं कि आपने मशहूद को मफहूम बनाकर पेश किया। अब बहुत मुश्किल है, देखिए खुद कुरान मजीद जब जन्नत की बात करता है, जब जन्नत की नेमतों की बात करता है, तो वहां पर जो इंटेलेक्चुअल रियलिटीज हैं, जो हकीकतन वहां पर होगा, वो खुद कुरान भी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला भी हमारे लिए बयान नहीं कर सकता, वो अल्फाज मौजूद नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल रियलिटीज को, वो कैपेसिटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि किसी को वो समझाया जा सके। लिहाजा कुरान ने अगर जन्नत की बात की है, अगर जो है वो जन्नत की नहरों की बात की है, अगर जो है जन्नत की नेमतों की बात की है, अगर आप सूरह रहमान को देखें, दूसरी सूरतों को देखें, तो वहां पर अल्लाह ताला ने इंटेलेक्चुअल रियलिटीज को किसी हद तक हमारे लिए काबिले फहम बनाकर पेश किया है, वरना हमें उसका इदराक नहीं है कि कयामत में जब हम बहिश्त में होंगे, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, अगर हम बहिश्त में होते हैं तो बहिश्त की जन्नत की जो नेमतें हैं उसका कुरान खुद कहता है एक मकाम पर कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, असल तुम्हारे तसव्वुर से मावरा है कि वहां पर मैंने तुम्हारी आंखों की ठंडक के लिए मैंने वहां पर क्या कुछ रखा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आलम शहूद में जब इंसान किसी चीज को समझता है, जब इंसान किसी चीज को हासिल करता है, तो वो एक डायरेक्ट नॉलेज होती है। उस डायरेक्ट नॉलेज को मफाहिम में तब्दील करना, कॉन्सेप्ट्स में तब्दील करना, अल्फाज में तब्दील करना, वो चीज जो है वो आमतौर से मुमकिन नहीं होती। लिहाजा फिर अल्लामा जवादी इसके बाद ये कहते हैं कि इरफान रा दर खिदमत कुरान बुरहान खैर। अब ये मैं समझता हूं कि आपके लिए एक अहम एस्पेक्ट होगा कि जिसकी तरफ आयतुल्लाह जवादी आमली इशारा करते हैं। वो ये कहते हैं कि इरफान को कुरान की खिदमत में पेश किया, यानी इस वक्त आप देखें कि मुझे पाकिस्तान का तजुर्बा है, पाकिस्तान के टेलीविजन पर भी बाज मुजाकरात में शिरकत करने का, बहुत से उलमा जो हैं वो इरफान का इनकार करते हैं, मिस्टिसिज्म को डिनाई करते हैं, और इसको जो है वो एक हद तक कुफर का फतवा भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि इरफान इस्लामी जो है उसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये एक जंग है जो हर दौर में हमेशा से रहती है, लेकिन अल्लामा तबातबाई की खूबी ये है कि आपने इरफान को कुरान की खिदमत का मतलब ये है कि कुरान को फौकियत हासिल है, कुरान को सरपरस्ती हासिल है, कुरान की रोशनी में इरफान को बयान करना, यानी इरफान को अपने इरफानी तजुर्बात को, अपने मिस्टिक एक्सपीरियंसेस को इस तरह से दुनिया के सामने रखना कि जो कुरान की आयात से कंट्राडिक्ट ना करें, बल्कि कुरान की आयात की रोशनी में उन एक्सपीरियंसेस को समझना जो है वो इंसान के लिए ज्यादा आसान हो सके। तो ये वो चीजें थी जो मुकदमतन मैं बयान करना चाहता था। हमारे पास 3 मिनट हैं, मैं चाहता हूं कि 45 मिनट से ज्यादा जो है हमारा ये जो सेशन है वो इससे ज्यादा ना हो। जहां तक सवालात वगैरह का ताल्लुक है, मैं शुरू में इसको आपके क्वेश्चंस को ज्यादा मैं ना वक्त देना चाहता हूं, ना मैं उसको इतनी अहमियत देना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत सी बातें जो आपके जहनों में होंगी, हो सकता है हम बाद में आके उसको डिटेल में हम उसको डिस्कस करें, और हो सकता है कि जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर को हम अलग सेशंस उसमें रखें, और इस रिसाले विलायत को खत्म होने के बाद हम 2-3 सेशन ऐसे हों कि जिसमें जो पूरे इस कोर्स में जो सवालात आपके जहन में आए और जो आप वक्तन फवक्तन मुझे टेक्स्ट करते रहे या यहाँ पर आप बयान करते रहे, तो मैं उनको नोट करता रहूंगा, लेकिन फिर भी हम 5-1 मिनट जरूर रखेंगे ताकि हम कोई क्वेश्चन आंसर जो है वो हर लेक्चर के बाद हम उसको ले सकें। तो सिर्फ मैं जो इस वक्त हमारे पास 1-2 मिनट हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगरचे मैं चाह रहा था कि खुद उस टेक्स्ट के हवाले से उसका खुलासा मैं बयान करूं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम तफसील के साथ हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और मैं उससे पहले एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन इस 1-2 मिनट में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा तबतबाई एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब हम कायनात में अपने इस रिसाले विलायत का जो आगाज है वो बुनियादी तौर पर आप जब शुरू करते हैं तो वो इससे करते हैं कि इस कायनात में एक चीज हकीकत होती है और एक चीज एतबार होती है। तो एतबारी होना और हकीकी होना जो है उसके हवाले से अल्लामा तबतबाई बात करते हैं कि हमारी जो कायनात है, जो इंसानी मुआशरा है, इसमें जो हमारी जो दुनिया है वो एतबारात की दुनिया है। हमारा जो कवानीन है वो एतबारात का क्या मतलब है, यानी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी कॉन्सेप्चुअलाइज करना। देखें, ये जो एतबार का लफ्ज है बार बार हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा मैं इसको अभी से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि रियलिटी और इंटेलेक्चुअलिटी जो है इन दोनों चीजों में एक फर्क होता है। अल्लामा तबतबाई अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह से करते हैं कि इस कायनात में दो चीजें तो हमें नजर आती हैं जो हमारी निगाहों के सामने हैं, एक जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, आपके सामने मेज है, आपके सामने कुर्सी है, आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने जो है आपका घर है, आपका कमरा है, और हर वो चीज जो आपके सामने है, और एक वो है जो आप खुद हैं जो उस चीज को देख रहे हैं, लेकिन एक आपका रिलेशन है इन चीजों के दरमियान। अल्लामा तबतबाई ये कहते हैं कि इंसानी माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक के वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ना हो, जब तक वो इंटेलेक्चुअलाइज ना करे चीजों को। अब मैं मिसाल देता हूं ताकि अब मिसाल से आप समझ सकें, और इसके बाद इंशाल्लाह तफसील के साथ हम आइंदा सेशन में उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा तबतबाई ये फरमाते हैं, मिसाल मैंने खुद बनाई है, मैं आपको देना चाहता हूँ, किताब में भी उन्होंने दी है। मिसाल के तौर पर आप अपने कार के मालिक हैं, आप अपने मकान के मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि आपके सामने मकान भी है और आपके सामने आप भी हैं, लेकिन आप ये जो कहते हैं कि मैं ओनरशिप मेरी है, आप ये जो कहते हैं मालिकियत मेरी है, ये मालिकियत कहाँ पे है? इस मालिकियत का ताल्लुक इस बात से है कि हमने ये इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया है, हमने ये कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया है कि ये मकान आपका है। लेकिन अल्लामा तबतबाई अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एतबार नहीं है, ये एक हकीकत के ऊपर बेस करता है। हर वो चीज जो इंटेलेक्चुअलाइज की जाती है उसके पीछे एक रियलिटी होती है, उसका एक बातिन होता है, उसका एक डीपर लेवल होता है। और वो इंटेलेक्चुअलिटी क्या है? फर्ज करते हैं कि आप कहते हैं जी मैं अपने घर का मालिक हूं, तो आप, मैं कहता हूं कि मुझे मालिकियत कहीं दिखाएं, तो आप कहेंगे नहीं, मालिकियत जो है उसको तसव्वुर किया गया है, मालिकियत को एतबार किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एतबार नहीं है, अगर सिर्फ एतबार होता तो मैं कहता है कि मैं आपके घर पे मैं कब्जा कर लेता हूं, आज से मैं मालिक हो गया। आप कहां से, जब मालिक है ही नहीं, जब मालिकियत है ही नहीं, ओनरशिप है ही नहीं, दुनिया में नजर ही नहीं आ सकती, आप उसकी तरफ इशारा ही नहीं कर सकते, तो मैं आपके घर का मालिक क्यों नहीं बन जाता, मैं आपकी गाड़ी का मालिक क्यों नहीं बन जाता? अल्लामा तबतबाई फरमाते हैं नहीं, ये सिर्फ एतबार महज नहीं है, बल्कि इसके पर एक रियलिटी के ऊपर बेस करता है। और वो रियलिटी क्या है कि आपने इस घर के पीछे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका पेपर वर्क है, जो आपकी मनी ट्रांजैक्शन है, जो सारा इसके पीछे कुछ हकाइक मौजूद हैं, उन हकाइक से गुजरने के बाद आज मैं ये कहता हूं कि आपका मकान है। अगर फर्ज करते हैं कि मेरा टाइटल जो है वो प्रोफेसर है, तो मुझे आप ही कहेंगे कि मुझे जरा कहीं दिखा दें आप कहाँ हैं प्रोफेसर, मुझे तो आपकी जात नजर आती है या यूनिवर्सिटी नजर आती है, ये प्रोफेसरशिप कहाँ है? तो आप, मैं ये कहूंगा देखिए मैं अगर प्रोफेसर हूं तो ये बेस करता है उस पूरी जिंदगी की नॉलेज के साथ जो मैंने हासिल की, जो डिग्रियां मैंने हासिल की, वो नॉलेज मेरी रूह में मौजूद है, वो मेरे कल्ब में मौजूद है। आप मुझे प्रोफेसरशिप से हटा सकते हैं, लेकिन आप मेरी इल्म को मुझसे नहीं छीन सकते, मेरी रूह को मुझसे नहीं छीन सकते, मेरे कल्ब को मुझसे नहीं छीन सकते, यानी उस हकीकत को मुझसे नहीं छीन सकते कि जो मेरी जात का हिस्सा बन चुका है, जो मेरी रूह का हिस्सा बन चुका है। तो अल्लामा तबतबाई ये फरमाते हैं कि हर एतबार के पीछे जो है एक हकीकत होती है, और उस हकीकत को समझना जो है वो हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, हो सकता है आज वो उसको जो है वो गवर्नमेंट ने एज ए डॉक्टर एक्सेप्ट किया हो, लेकिन कल को वो उसके पास ये डेजिग्नेशन ना हो गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर, तो वो टाइटल कुछ और होता है, लेबलिंग कुछ और होती है, लेकिन उसके पीछे एक हकीकत होती है। और इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी इन डेप्थ अप्रोच है अल्लामा तबतबाई की, कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो आपको किस किन वादियों की तरफ जो है रिसाला विलायत के जरिए लेकर चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। आप में से अगर कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहता है कोई थोड़ा सा, तो दो चार मिनट के लिए आप अपने माइक को सिर्फ वही सिर्फ ऑन करें जो बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच. आपके जो आप लिख रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ उनको, और इंशाल्लाह ये तो बिल्कुल आगाज है आज, और बहुत कुछ है इसके अंदर जो जिसके ऊपर जो है वो बहुत तफसील के साथ हमारी बात होगी. लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है, रेडीनेस है, और आपकी जो कमिटमेंट है वो इसके लिए बहुत जरूरी है. उसकी जो सीरियसनेस जिसको हम कहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.